Hare Krishna. तो आज हम श्री बलराम जयंती के बाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रतीक्षा में इस सप्ताह का आरंभ कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के छोटे भाई हैं और उनके बांग में उनका आविर्भाव हुआ है और बलराम जी उनके आविर्भाव के लिए तैयारी करते हैं, हमारे हृदय की, देवकी के गर्भ की, हर चीज़ की। इस तरह से बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व है और जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर हम कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करते हैं और जाने अनजाने में भी अगर बलराम जी को उपेक्षा करते हैं उनकी या निग्लेक्ट करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो भगवान हमारी पूजा आराधना स्वीकार नहीं करते। इसी के उपलक्ष में ये जो कहानी हम अभी चर्चा करने वाले हैं उसकी प्रास्ताविक कहानी जो है वो नरकासुर की है। हम सब जानते हैं कि जब ही वराहदेव का अवतार हुआ था और उन्होंने गर्भोदक सागर में कूदकर उसके तल से पृथ्वी को अपने सिंह पर उठाया था, क्या कहते हैं उसको, टस्क को हिंदी में, हाँ, उस पर उठाया था और अपनी जगह पर रखा था, तो उस समय जो भगवान का, वराहदेव का और भूमि देवी का संबंध हुआ उससे नरकासुर की उत्पत्ति हुई। नरकासुर मतलब तभी वो नरक भौम नाम था उनका, भौम यानी भूमि का पुत्र, भूमि का पुत्र भौम, आगे जाकर वो असुर बना इसलिए वो भौमासुर बन गया, लेकिन है वो भगवान का पुत्र। और भगवान अगर कोई पापी व्यक्ति है तो अगर वो उनका पुत्र भी है तो उसको दंड देने में वो देखते नहीं है, दंड देने में बिल्कुल जोरदार दंड देते हैं उनको। तो इस तरह से भौम जो है वो भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी जब राक्षसों का संग करता है उतना आतंक मचाता है कि वो जो अदिति हैं इंद्र की माता, देवताओं की माता, उनके कुंडल चुराता है, वरुण देव की छतरी चुराता है और वो ऐसी हमारी छतरी नहीं होती, वो वरुण की छतरी का वर्णन ऐसा किया गया है कि वो पूरे रत्नों से भरी हुई है, एफलजेंट, प्रज्वलित है प्रकाश से। वो छतरी उन्होंने भगवान का जब अभिषेक हुआ था गोवर्धन में तो वहाँ पर भी लाई थी। ऐसे हर एक देवता के लोकों में एक एक श्रेष्ठ वस्तु है, जैसे वायुदेव के पास एक सिंहासन है जो सभी देवताओं के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन है। तो जब इंद्र ने भगवान का अभिषेक करने का सोचा उस समय उन्होंने सभी देवताओं के लोकों से सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को लाने के लिए आदेश दिया और उन सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को लेकर भगवान का अभिषेक गौरव किया गया। तो वो जो छत्री थी उनकी, छत्र, वो भी उन्होंने चुराया था और बहुत प्रकार से देवताओं के लिए उन्होंने कष्ट उत्पन्न किया था। तो फिर इंद्र जो है वो परेशान होकर द्वारका में आते हैं और भगवान के लिए बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत कष्ट का काम है, आप इसका निवारण कीजिए, निवेदन करते हैं। तो भगवान तुरंत ही अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ जी पर बैठकर जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर नाम का ये जगह है जहाँ पर भौमासुर का किंगडम था, कैपिटल, राजधानी थी वो। तो सत्यभामा जी को साथ में ले जाने के लिए भी एक विशेष कारण है उसका, क्योंकि भगवान ने पारिजातक का झाड़ जो है, पेड़, वृक्ष जो है वो रुक्मिणी के आंगन में लगाया था, सॉरी सत्यभामा के आंगन में लगाया था, लेकिन उसके फूल जो है वो हमेशा रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। ये भगवान की जो रानियां हैं इनकी इतनी विशेष भाव है उनका, हाँ, वो स्वकीय रस में भगवान की सेवा करती लेकिन फिर भी इनका इतना विशेष भाव है कि वो इस तरह से व्यवहार करती है कि जिससे भगवान का उन पर प्रेम और उनका भगवान का प्रेम बढ़ जाए। तो चंद्रावली और राधा रानी है, चंद्रावली राधा रानी की विस्तार है स्वयं, क्योंकि चंद्रावली का विशेष रोल जो है राधा रानी की जो भी योजना है उसके खिलाफ काम करना और भगवान को अपनी ओर खींचना, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है कि ये न कहने प्रकार है ना, जैसे भगवान का जो हमारे ऊपर प्रेम है, हमारा उनका प्रेम है, उसकी जो तीव्रता है और गहराई है वो बढ़ती जाए। तो हमको लगता है सत्यभामा कितनी द्वेष करती हैं, तुलना करने वाली, ऐसा हमको लगता है लौकिक दृष्टि से, लेकिन ये सब सही नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। तो भगवान ने सोचा कि चलो हम अभी चलेंगे और ये कुंडल जो है नरकासुर भौमासुर को मारने के बाद में इंद्र को देखे आएंगे, चलो आप साथ में चलो, क्योंकि इंद्र के लोक में एक नंदनवन है और नंदनवन में एक प्राजक्त का अलग से वन है, और जितने भी 14 भुवन में पेड़ हैं उसमें श्रेष्ठ जो प्राजक्त का वन है वो इंद्र के पास है, तो वहाँ से आप ले लेना आपको जो चाहिए बस। तो जाते हैं और बड़ी लंबी कहानी है कैसे वो वध करते हैं भौमासुर का, तो भौमासुर का वध करते हैं, गरुड़ भी उनमें युद्ध में भयंकर सहायता करते हैं और सभी भौमासुर का जो भय एकदम सुरक्षित जो उनका राजधानी था उसको सबको सुरक्षा को तोड़ते हुए भगवान विजय प्राप्त करते हैं, नरकासुर को मारते हैं और वो कुंडल जो है उनकी माता के वो देने के लिए इंद्र के पास जाते हैं। अभी आप सोचिए कि इंद्र अभी इंद्र के देवताओं का जो समय होता है ना, वो ब्रह्मा जी का एक क्षण जो है हमारे एक साल के बराबर है और देवताओं का जो एक दिन है वो हमारे 6 महीने के बराबर है, ठीक है। तो इंद्र के हिसाब से कुछ ही दिन पहले भगवान ने उनका गर्भहरण किया था, है ना, मान हरण किया था कुछ ही दिन पहले, हमारे गणित के अनुसार वो शायद कुछ साल हो गए होंगे, तब भगवान ब्रज में थे, 7 साल के थे, अभी द्वारका में राजा बने हुए हैं, अभी नव यौवन बहुत उम्र के हो गए हैं, लेकिन इंद्र के हिसाब से कुछ ही दिन पहले यह हादसा हुआ था। हाँ, और उसके बाद में अभी अभी वो भगवान के पास में कंप्लेंट लेकर आए थे भौमासुर की, और तुरंत भगवान निकले हैं और भौमासुर का वध किया है और वहीं से स्ट्रेट वो इंद्र लोग गए हैं, और तभी भी इंद्रलोक के जब पहुंचते हैं तो भगवान उनको कुंडल देते हैं अपनी माता के, और जैसे ही भगवान आते हैं तो वो जानते हैं कि भगवान हैं, ऐसे नहीं कि वो भूले हुए हैं, और भगवान का गौरव करते हैं, पाद पूजा करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, स्तुति पर वचन बोलते हैं, क्षेम कुशल पूछते हैं, उसके बाद भगवान पे उनके विदा लेकर चले जाते हैं। ऑन द वे बैक वो सत्यभामा जी को कहते हैं, देवी ये प्राजक्त का वन है, जो चाहिए आपको जिस जैसा पसंद है वो पेड़ आप ले लीजिए। तो सत्यभामा बड़े प्रेम से एक पेड़ ले लेती है, तो जैसे ही वो पेड़ को उठाती है और गरुड़ जी पर रखती है, वो तुरंत उनके जो सैनिक हैं द्वारपाल रक्षक जो हैं वो अटैक करते हैं उनके ऊपर कि आपको ऐसा अधिकार नहीं ले जाने का। तो भगवान तुरंत वहाँ से इंद्र को कंप्लेंट करते हैं और इंद्र क्या करते हैं, सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करते हैं। सोचिए आप, सेना लेकर आक्रमण करते हैं कि हमें पूछे बिना आपने ये जो प्राजक्त का वृक्ष है वो कैसे लिया। इसका कारण यह है कि ऐसा क्यों होता है, इंद्र इतने देवताओं के राजा होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देवता लोक में ऐसे ऐश्वर्य भगवान ने दिए हुए हैं कि क्षण क्षण में वो ऐश्वर्य के प्रभाव से आदमी सत्य को भूल जाता है। अभी क्या उनको पता नहीं था क्या, जब भी भगवान ने पर्वत को उठाया तो 7 दिन 7 रात तक वो वर्षा करते रहे, उतना काफ़ी नहीं था क्या कि उन्होंने उठाया तुरंत समझ गया कि भाई ये हमने गलती किया, लेकिन इतना प्रभाव, ऐसे कहते हैं भोग और ऐश्वर्य जो है दोनों बहुत प्रतिकूल चीज़ें हैं, इनके होने से कदम कदम पर इंद्रियों के भोग के प्रभाव से, उस भोग के अनुभव के प्रभाव से हम लोग बार बार भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग भक्त हैं भगवान के जब भी करते हैं, लेकिन जब भोग सामने आता है तो उस समय के लिए हम अंधकार में चले जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। अभी कुछ क्षण पहले उसके भगवान ने स्वयं उनके लिए उनके कंप्लेंट के अनुसार उसको रिस्पांस देते हुए कुंडल वापस कर दिए हैं भौमासुर को मारकर, उनका गौरव भी किया है और कुछ क्षण बाद वो भगवान पर हमला कर रहे हैं, तो भगवान बड़ी लीला या उनको पराजय कर देते हैं, उनको हरा देते हैं, फिर इंद्र आके फिर माफ़ी मांगते हैं। इसलिए हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी देवताओं के लोकों में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ से सब अच्छा लगता है हमको, यह कर्मकांड यज्ञ करेंगे, वहाँ जाएंगे और नंदनवन में रहेंगे, अप्सराओं के बीच में रहेंगे, सोमरस पियेंगे, इंद्रियों को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे भोग लेने के लिए। हमारे यहाँ का जो होता है सोमरस, वो इंद्रियों को शिथिल बना देता है। वहाँ का जो सोमरस होता है वो अधिक भोग लेने के लिए इंद्रियों को शक्तिशाली बना देता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से कार्यान्वित है, वो हमारी आत्मा के हित में नहीं है, क्योंकि वो हमें त्रिगुणों के प्रभाव में ऐसे जकड़ देगा कि हम भगवान को नहीं पहचान सकते। सत्व गुण के अंदर भी जब हम जकड़ते हैं तो भी हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल होता है, क्योंकि वो सोने की जंजीर की तरह होता है। सत्व गुण का मतलब एकदम अच्छा रहना, सत्य बोलना, शास्त्र का ज्ञान होना, अच्छा व्यवहार होना, ये भी इतना अट्रैक्टिव है कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो जितना तमोगुण स्थूल है, ग्रॉस है, हमारे लिए प्रतिकूल है, उतना ही सत्वगुण जो है वो सूक्ष्म है, वो भी हमारे लिए प्रतिकूल है। और सत्वगुण के वातावरण में सब लोग स्वर्ग लोकों में रहते हैं, और जब इतना भोग करते हैं, एक थोड़ा सा और मैं वर्णन करता हूँ उसका कि कैसे कैसे भोग है। जैसे हमारे यहाँ पर शरीर से बदबू आती है, हाँ, एक दिन स्नान नहीं करेंगे तो मुंह से, शरीर से, सब जगह से बदबू आती है। हमारे शरीर से मल और मूत्र निकलता है, और हमारे लोक में गटर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, हाँ, कितनी गंदगी यहाँ पर है। लेकिन स्वर्गलोक में कोई टॉयलेट नहीं है, क्यों? उनके शरीर में मलमूत्र होता ही नहीं, इसलिए मलमूत्र विसर्जन का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ना नालियाँ हैं, ना गटर्स हैं, ना सुलभ शौचालय है, ना कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं उसकी। इसका मतलब गंदगी और बदबू, दुर्गंध वहाँ पर नहीं है। ये तो निगेटिव बात हो गई, लेकिन साथ साथ सुगंध भी है। हर एक देवता का जो भोग शरीर है, उस शरीर को भोग शरीर कहते हैं। केवल भोग के लिए, भोग को द्विगुणित, त्रिगुणित और अनंत गुणित करने के लिए उसको शरीर को बनाया गया है। और दर्द का अनुभव बहुत कम है उसके अंदर। और उस भोग शरीर के अंदर हर एक देवता के, एकदम सामान्य देवता भी जो है, उसका कोई नाम किधर भी नहीं है, उसके शरीर से भी एक एक कोष की त्रिज्या रेडियस के ऊपर सुगंध आती है। एक प्रवचन ने महाराज ने बताया था कि अगर हम इसी अवस्था में, अगर हमको अभी ऑन द स्पॉट स्वर्ग में रखा जाएगा, तो काम वासना के प्रकोप से हम लोग मर जाएंगे उधर तुरंत ही, क्योंकि सारी स्त्रियां जो हैं वो इतनी सुंदर रहती हैं वहाँ पर, देवताओं की स्त्रियां, जिनके शरीर से खुशबू आती रहती है, जिनकी जो फूलों का श्रृंगार करती है, वो फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। ऐसे देवताओं के स्त्रियों के साथ में अगर आप बैठेंगे तो तुरंत हमारा काम अग्नि प्रकोपित होकर देहांत हो जाएगा, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, इतना भोग है वहां पर, इतना। तो ऐसे अवस्था में कोई जीव अगर जाता है, जाता ही है वहां पर भोग लेने के लिए, है ना, यहाँ पर कर्मकांड करता है, अपेक्षा करता है, और वहां की अपेक्षा करके वहां पहुंचता है, तो वहां जाके भोग लेगा ही। इसलिए मनुष्यों का जन्म जो है वो देवताओं के जन्म से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो 400,000 योनियों का वर्णन किया गया है उसमें देवता भी आते हैं, और देवताओं के भी जन्म से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में यहाँ पर पृथ्वी पर दुख अधिक है, सुख कम है। हाँ, दुख जवाब, दुख पर्वताय, सुख जवा पाड़े, दुख पर्वतायड़ी, सतुकाराम महाराज बताते हैं कि जैसे हम एक जव के समान जब सुख का अनुभव करते हैं, तो उसके लिए हमको पर्वत के समान दुख का पहले भोग लेना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। ये यहाँ की स्थिति है। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आयु जो है अधिक से अधिक 100,000 साल होती है सत्ययुग में, फिर 10,000 साल, फिर 1,000 साल, फिर पृथ्वी, फिर कलयुग में 100 साल। लेकिन देवताओं का जो कालावधि है वो लाखों वर्षों में होता है, और उतने वर्ष तक उनको वहाँ रह के भोग लेना पड़ता है। अगर समझो बीच में अनुभूति हो भी गई तो भी बहुत समय वहाँ पर भोग के चक्कर में रहना पड़ता है। जैसे कि आप ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, वो धन दौलत के बीच में, प्रभाव के बीच में, अच्छे वस्त्रों के बीच में, स्त्रियों के बीच में कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं। तो वैसे संत भी है तो देवता लोगों में बहुत उनको त्रास होता है, क्योंकि इतने भोग वहाँ पर बिखरे हुए हैं। खाना पीना हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं, इतना श्रेष्ठ पदार्थ खाने के लिए, और व्यवस्था, और नंदनवन, और अप्सराएं, और सब कुछ बोनाफाइड है। हाँ, जब अप्सराएं आपको आनंद देती हैं तो कोई वो अनबोनाफाइड नहीं है। इंद्र भी, इंद्र के पास पत्नी भी है और बहुत सारी अप्सराएं भी हैं उनके आनंद के लिए। नृत्य होता है, संगीत इस तरह से बजता है कि कानों के लिए इतना इतना भोग है, इतना आनंद है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जब अकाउंट खत्म होता है फिर दोबारा यहाँ पर आना पड़ता है। इसलिए हमें ये इंद्र के उदाहरण से हम बार बार समझ सकते हैं, और भी देवता हैं उनके उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमको कभी भी देवलोक में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वहाँ के भोगों को प्राप्त करते हुए हम भगवान की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। नारद मुनि इसलिए महान है कि नारद मुनि सब लोगों पर विचरण करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी इस भोग के आकर्षण से लिप्त नहीं होते, उल्टा देवताओं को उपदेश करते हैं, उनको भोगों के लिप्तता से बाहर निकालते हैं, उनको उपदेश देते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो नारद मुनि जी महान है। और इंद्र देवेंद्र होकर भी बार बार उनका पतन होता है, बार बार मोह में ग्रस्त होता है, बार बार भगवान का अपराध करता है। एनीवेज, तो फिर भगवान लौट कर आते हैं और नरकासुर का वध करने के बाद में द्विविध गोरिला जो एप यानी कि वानर था वो बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि वो नरकासुर का मित्र था, नरकस्य सखा ऐसा उसको बताया गया है। वो नरकासुर का मित्र था, इसलिए जब उसका वध हुआ तो वो उसका भाई महेंद्र, दोनों ये प्रभु रामचंद्र के अवतार में भी थे त्रेता युग में, और सुग्रीव राजा के सेनापति के रूप में उन्होंने सेवा दिया है, वो प्रभु रामचंद्र के संग में रहे। वो ऐसे कहा गया है कि वो उनकी जब भी पूजा हुआ करती थी तो मेन व्यक्ति जो थे वो द्विविध और महेंद्र थे। तो भगवान राम का जो भी गौरव पूजा समारंभ हुआ करता था तो उसके प्रमुख जो आयोजक थे। इट इज एक्सप्लेन इन इंग्लिश दैट देवर द मेन डीटीज इन द प्रोग्राम ऑफ वर्शिपिंग ग्लोरिफाइंग लॉर्ड रामचंद्र, ऐसी उनकी पोजिशन थी। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण का आदर नहीं किया। अनेक बार ऐसा प्रसंग आया तो लक्ष्मण से उनका मतभेद हुआ और लक्ष्मण जी से उन्होंने अनादर पूर्वक व्यवहार किया। तो प्रभु रामचंद्र ने ये लीला विशेष रूप से आयोजित की ये बताने के लिए, जो हमने पहले बताया था कि केवल अगर हम कृष्ण को भजेंगे पूजेंगे उनकी आराधना करेंगे और बलराम जी को निग्लेक्ट करेंगे तो भगवान को ये पसंद नहीं है, क्योंकि तो भगवान बलराम जी उनके प्रथम विस्तार हैं और वो गुरु तत्व भी हैं। तो इसलिए जैसे ही उन्होंने प्रभु रामचंद्र के विजय में सहायता की, बहुत सारा उनको युद्ध में सहायता दी, वानरों का नेतृत्व किया और भगवान को विजय प्राप्त करा दी, सीता जी वापस आई और लीला समाप्त हुई, फिर भी ये जीवित रहे और द्वापर युग में भी जीते रहे। द्वापर युग के अंत तक, जो कि तब भगवान का जो अवतार हुआ है वो द्वापर के अंत में हुआ है ना, लास्ट 125 ईयर्स ये भगवान कृष्ण लीला का समय है। तो उन्होंने उनके लक्ष्मण जी के प्रति किए हुए अपराध की वजह से उनके जो सद्गुण थे वो नष्ट हो गए, उनके अंदर अनर्थ जागृत हो गए और अनर्थों की वजह से वो राक्षसों के संग में आए। उनके मित्र थे नरकासुर, इस टाइप के मित्र थे उनके, इस संग की वजह से उनके अंदर और दुर्गुण राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत हो गई, भोग की प्रवृत्ति जागृत हो गई और साथ में दूसरों को दुख देने की, कष्ट देने की, पीड़ा देने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। यानी कि सत्वगुण से रजगुण, रजगुण से तमोगुण और उसके नीचे पतन, इस तरह से उनकी यात्रा हुई। तो हमें समझना बहुत जरूरी है, एक तो पहले हमने बताया कि भोग की अधिक अपेक्षा कर स्वर्गवास की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि गलत संग जो होता है वो हम कितने भी अच्छे होंगे, कितने भी सद्गुण संपन्न होंगे, लेकिन जो कुसंगति होती है वो कुसंगति से कोई भी आदमी बच नहीं सकता है। कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अगर आपने आपको कुसंगति में डाल लेता है स्वेच्छा से या न स्वेच्छा से, न स्वेच्छा होते हुए भी, तो उस पर उसका परिणाम होना ही है। जैसे कि अगर हम मक्खन को अंगरी में अग्नि के पास रखेंगे तो हम कहेंगे हमारा मक्खन ऐसा नहीं, वो पिघलता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वभाव से मक्खन जो है वो अग्नि के संपर्क में आने से पिघल जाता है, उसी तरह से अगर स्वच्छ और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति भी अगर कुसंगति में आता है तो उसका पतन हो जाता है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वैष्णव की व्याख्या क्या है, जो सबसे पहले असंग को छोड़ देता है वही वैष्णव की पहचान है, कि वो प्रयत्न पूर्वक ज्ञान पूर्वक असंग को त्याग देता है। इसलिए हम जब भक्ति में आते हैं तो हमेशा हमको ये प्रयास करना चाहिए, हम भक्तों का संग कर रहे हैं और करना चाहिए रेगुलरली, लेकिन साथ साथ असंगति जो है कुसंगति उसको भी त्याग करना चाहिए प्रयत्नपूर्वक। अगर हम परिवार के फंक्शन में जाते हैं, अगर हम कोई नेशनल फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि डू द नीडफुल ओनली, जो ज़रूरत है उतना ही संपर्क रखे, अधिक वहाँ पर ना फंसते हुए तुरंत बाहर निकलना चाहिए, केवल कर्तव्य को करके वहाँ से निकलना चाहिए। एक कदम भी आपने वहाँ पर ज़्यादा रखा, एक क्षण भी ज़्यादा किया तो उसका परिणाम हम पे होने वाला है। तो द्विविध गोरिल जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है। और आज तक आजकल हम सुनते हैं आतंकवाद, इस तरह से भरी हुई जनता के बीच में स्पोर्ट होता है और लोग भयभीत हो जाते हैं, ट्रेन में बम विस्फोट होता है, जहाँ पर समारोह हो रहा है चाइना में वहाँ पर बम विस्फोट हो रहे हैं। तो आतंक यानी कि डर पैदा करना, तो गोरिल्ला द्विविध ने जो आतंक फैला दिया पूरे देश में, वो आज के स्तर पे कोई भी बम विस्फोट उसकी तुलना नहीं कर सकता, इतना भयंकर आतंक उसने मचा दिया। उसका उसने सबसे पहले क्रोध से सभी गांवों में शहरों में जहाँ पर लोग बिजनेस करते हैं व्यवहार करते हैं सब जगह आग लगाना आरंभ कर दिया। जहाँ पर लोग गाय चराते हैं गौशाला को, जहाँ पर लोग खेती करते हैं सब जगह उसने आग लगा दिया। उसके बाद में उसने पहाड़ों को उखाड़ कर टुकड़े करके शहरों में फेंक दिया उसको। अभी देखिए पहाड़ का होना भी सृष्टि में बहुत आवश्यक है, पहाड़ से बादल आकर्षित होते हैं, पहाड़ हमको जड़ी बूटियाँ देता है, झरने नदियाँ गुफाएँ कंदर ये सब हमको प्राप्त होते हैं, तो पहाड़ों का होना एक स्वाभाविक प्राकृतिक चीज़ है। तो उसने उसको नष्ट कर दिया और सारा उसका जो आतंक का सेंटर था वो था कठवाड़ डिस्ट्रिक्ट।